हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा राश्री हरि राधा राश्री हरि राधे, जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा।
हरि नाम संकीर्तन की
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो प्रतिदिन की भांति आज भी भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का अध्याय है 2 श्लोक संख्या 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्लोक कार्पण्य दोष उपहता स्वभावा प्रेक्षामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यश्रियानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यातेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष उपहता स्वभावा प्रेक्षामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यश्रियासनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यातेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष उपहता स्वभावः प्रेक्षामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यक्षयाशनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यातेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। बोलिए। शिष्यातेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष उपहता स्वभावा परीक्षामि त्वं धर्म समूढ़चेता यक्षयाशनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यातेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव प्रेक्षामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यक्षयाशनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यातेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव प्रेक्षामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यक्षयाशनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यातेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव प्रेक्षामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यक्षयाशनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यातेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव प्रेक्षामि त्वं धर्म समूढचेतः यक्षेयास्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्या तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम् कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढचेता यक्षेयास्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्या तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम् शब्द का अर्थ कार्पण्या कृपणता दोषा दुर्बलता से उपहता ग्रस्त स्वभावा गुण विशेषताएं परीक्षामि पूछ रहा हूँ त्वाम तुमसे धर्मा धर्म समूढ़ा मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो श्रेया कल्याणकारी है स्यात् हो निश्चितम विश्वासपूर्वक ब्रूहि कहो तत् वह में मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं साधि उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की अब मैं अपनी कीर्पन दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यह प्रकृति के नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः परमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए परमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावा अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लग जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का परमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझन में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.10 व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ओ वा यो वा एतदक्षरम गार्गी विदित्वा स्मला लोका प्रीति स कीर्पना। कीर्पन वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर के भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है वह कीर्पन है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ए एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा स्मला लोके लोकात प्रति स ब्रह्मणा दे आत्मा बुद्धि वस कीर्पन या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार समाज देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी बच्चे तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कीर्पन यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था किंतु कीर्पन दौर बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य हैं। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताती हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामने गौरतिवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयस्य कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सबसे पहले आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद दीजिए ताकि भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ जो भगवान के मुखारविंद से आया है कुछ बोलने का प्रयास करो। हरे कृष्ण। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि ये जो देह आत्मा बुद्धि का भाव होता है वो कैसे व्यक्ति को संघर्ष में डाल देता है, उसके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये देह आत्मा बुद्धि का भावना है क्या? देह आत्मा बुद्धि का भाव है कि हम सोचते हैं कि हम भोक्ता हैं, स्वामी हैं और हम नियंता हैं, लेकिन कृष्णा भावनामृत इसके विपरीत है। कृष्णा भावनामृत में हमें पता है कि भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और नियंता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और स्वामी भी भगवान श्री कृष्ण है। तो देह आत्मा बुद्धि के कारण हमारे पास अनगिनत भौतिक इच्छाएं आती हैं। सेल्फ ऑब्जॉर्प्शन के कारण हमारे पास अनगिनत भौतिक इच्छाएं होती हैं। और ये जो इच्छाएं हैं इसका स्वभाव क्या है? वो एक दूसरे से संघर्ष करती हैं, एक दूसरे का विरोध होता है। जैसे कि कभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है और फिर कभी इच्छा होता है कि मेरे परिवार वाले हैं, मुझे उनको रक्षा करना है। फिर इच्छा होती है कि समाज में कुछ अच्छा करना है जिससे मेरा नाम होगा, और फिर थोड़ा बहुत धर्म का भी पालन करना है जिससे लोग मुझे पापी ना बोले। तो और इस प्रकार की अनगिनत इच्छाएं हमारे हृदय में आती हैं। तो ये जो इच्छाएं हैं ये हृदय में आती हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब ये इच्छाओं के बीच में लड़ाई होता है। और तो क्या होता है कि ये जब इच्छाओं, इतने सारे इच्छाएं हमारे हृदय में आती हैं एक साथ में और उनके बीच में लड़ाई हो रहा है तो अंदर से कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये अंदर का संघर्ष की ओर लेके जाता है हमें, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं इसको। अंदर से मतलब है ना, इतना सारा चीज चल रहा है कि अंदर से हम क्लियर नहीं रहते हैं, तो बाहर से तो क्लियर होंगे ही नहीं। तो अंदर से हम भौतिक इच्छाओं से लड़ाई कर रहे हैं और उनका स्वभाव क्या है कि वे एक दूसरे के साथ परस्पर विरोधी हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप प्रसाद खा रहे हो और प्रसाद बहुत टेस्टी है तो आपको ज़्यादा खाना है, लेकिन बहुत सारे मंदिरों में क्या होता है, भागवतम क्लास के पहले ब्रेकफास्ट होता है। तो कुछ मंदिरों में 15 मिनट का टाइम रहता है और आपको उसमें ब्रेकफास्ट लेके भागवतम क्लास के लिए जाना है, लेकिन क्या होता है कभी कभी प्रसादम ज़्यादा टेस्टी है तो थोड़ा लेट कर देते हैं। तो कुछ मंदिरों में कुछ पनिशमेंट भी देते हैं क्लास में लेट आने से। और क्या होता है कि अगर उसी समय कोई आपको मिलने आया है मंदिर में और आपको उस व्यक्ति से मिलना है और उनको जो भी चाहिए वो उनको देना है, तो क्या होता है कि जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है कि हमारा भूमिका क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा जिम्मेदारी क्या है, रोल गोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक ये क्लियर नहीं होता है, तब तक क्या होता है हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष आती हैं। और हम देखते हैं कि हमेशा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष आते रहता है। तो इसी प्रकार जो ये देह आत्मा बुद्धि का भावना है वो बाहरी संघर्ष की ओर भी लेके जाता है, क्योंकि देह आत्मा बुद्धि में लिप्त रहने के कारण, मग्न रहने के कारण जब कुछ लोग जो पूरी तरह से सेल्फ ऑब्जॉर्ब हैं, यानी कि देह आत्मा बुद्धि में मग्न है, वो लोग जब साथ में आते हैं और रहना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ और मैं नियंता हूँ। तो फिर उनके अंदर लड़ाई होता है उनके बीच में, और वो एक दूसरे के जीवन को दुखमय बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो पहला अध्याय था उसमें समस्याओं का समाधान बताया गया है। समस्या है कि कैसे देह आत्मा बुद्धि को त्यागें, क्योंकि ये देह आत्मा बुद्धि के कारण व्यक्ति अपने आप को मान लेता है कि मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ और मैं नियंता हूँ, तो इसका समाधान क्या है? कृष्णा भावना भावित बनना। तो अर्जुन का जो समस्या था वो केवल अर्जुन की नहीं थी, वो वास्तव में हम सबका भी है, क्योंकि हम लोग भी शरीर के अंदर पूरी तरह से मग्न हो गए हैं। हम भी सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं और फिर भौतिक इच्छाएं हैं और उसको पूरा करके हम सोचते हैं हम सुखी हो सकती हैं। तो ये गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने जो भी प्रश्न पूछ, जो भी कारण बताए थे भगवान श्री कृष्णा को युद्ध नहीं करने का, पहला था दया, तो भगवान ने बोला दया दिखाना है तो आत्मा पे दिखाइए। दूसरा कारण था कि कैसे आनंद आएगा, भोग कैसे मैं भोग करूँगा, तो भगवान बोले कि आप भोगता नहीं हो, मैं भोगता हूँ। और तीसरा कारण था कि मारने से पाप का फल भोगना होगा, तो भगवान बोले मेरे आदेश के अनुसार अगर आप उनको मारते हो तो कोई पाप नहीं लगेगा। चौथा था कि कुल धर्म का नाश हो जाएगा, तो भगवान बोले कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो दुर्योधन राजा बनेगा और वो द्रौपदी के साथ में गलत व्यवहार किया तो दूसरे के बारे में करना क्या, कहना ही क्या, तो वो कुल धर्म को पालन करने नहीं जा रहा है। और जो लास्ट वाला था इनडिसीजन, अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भगवान बोले कि अगर आप आत्मा राम बन जाती हो, स्थित प्रज्ञा, तो क्या हो जाता है कि आपको, आप ऑलरेडी दिव्य स्थिति में स्थित हो तो कोई भौतिक चीज की आवश्यकता ही नहीं है, भौतिक इच्छाएं ही नहीं रहेंगी, क्योंकि आत्मा राम वो व्यक्ति होते हैं जिनको भौतिक संसार के किसी भी वस्तु से कुछ लेना देना ही नहीं। आत्मा राम यानी कि आत्मा में ही जो आनंद लेते हैं उनको बोलते हैं आत्मा राम। तो दूसरा अध्याय जो है यहीं पे भगवद गीता खत्म हो जाता, लेकिन एक प्रश्न जो भगवान बोले थे समाधि के बारे में, तो अर्जुन वो सोचे कि ये ज़्यादा अच्छा है, तो अर्जुन ने फिर से एक प्रश्न पूछा कि अगर जायसी चेत कर्मनस्त मत बुद्धि जनार्दना तम किम कर्माणि घोरे माम नियोजिसी केशवा। बोलते हैं कि बुद्धि योगा कर्म से अच्छा है, तो आप मुझे क्यों ये लड़ाई करने में लगा रहे हो, अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो फिर भगवत गीता आगे जाता है, तो ये जो गीता का दूसरा अध्याय है इसमें चार विभाग हैं। पहले विभाग में 2.1 से यानी कि श्लोक संख्या 1 से 10 में बताया गया है कि अर्जुन कैसे गुरु के शरणागत होते हैं। तो गुरु के शरणागत होने से क्या होता है कि ये जो भी देह आत्मा बुद्धि का भावना है विचार है ये सब गुरु क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि गुरु पहला ज्ञान देते हैं शिष्य को, वो क्या है, वो बोलते हैं कि आप मूर्ख नंबर 1 हो, आप सबसे बड़े मूर्ख हो। तो ये मूर्ख किसको बोलते हैं, मूर्ख उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अपनी पहचान उस चीज से करता है जो है नहीं। जैसे कि एक साधारण व्यक्ति वो बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो आप क्या बोलोगे, पागल है। तो उसी तरह हम लोग दिन रात अपना पहचान इस शरीर से करते हैं जो हम नहीं हैं। तो आप देखेंगे भागवतम में भी जो गुरु आते हैं तो शिष्य को ज़्यादातर समय डांट फटकार ही मिलता है, और फिर बाद में वो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और फिर उनको ज्ञान देते हैं। जब नारद मुनि व्यास देव से मिले थे तो नारद मुनि ने उनको बोला था कि कलयुगा में लोग ऑलरेडी उनको चाहिए भोग विलास और आपने ये वैदिक तरीका दे दिया है कि कैसे धर्म अर्थ काम उसमें लगे और उस प्रकार से अल्टीमेटली मोक्ष मिलेगा उनको, वो भी कैवल्य का। तो नारद मुनि उसके लिए उनको अप्रसन्न थे उनसे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने उपदेश दिया कि आप भगवान श्री कृष्ण का दिव्य गुणों का गुणगान कीजिए जिससे आपको संतुष्टि मिलेगा। तो ये जो हम गुरु के शरणागत होते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। पहले वो चेस्टाइज करते हैं लेकिन फिर बाद में ज्ञान देती हैं। तो जब हमें ये आत्मा का ज्ञान होता है तो क्या होता है कि अभी हम इस शरीर के अंदर हैं, आत्मा इस भौतिक संसार में इस भौतिक शरीर के अंदर हैं। तो केवल ज्ञान होने से हम आत्मा के स्तर पे कार्य करना शुरू नहीं कर देंगे, इस शरीर का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए गुरु हमें दो धर्म के बारे में सिखाते हैं। एक है नित्य धर्मा, जो आत्मा का धर्म है, भगवान का सेवा करना, भगवान का नाम लेना, भगवान की कथाओं को सुनना। और दूसरा है स्वधर्मा। स्वधर्म का अर्थ होता है वर्णाश्रम धर्म, कि ये शरीर मिला है उसके बाद खाने के लिए चाहिए, परिवार वाले हैं तो उनका भी पालन करना है। तो अगर हम गुरु के निर्देश में इन दो धर्मों का पालन करते हैं, नित्य धर्मा और स्वधर्मा का, तो क्या होता है कि हम आत्मा राम के स्तर पे आ जाते हैं, हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। और जब आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं तो क्या होता है, ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा ना सोचती न कांक्षती समा सर्वेशु भूतेशु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मा भूत जो आत्मा के स्तर पे आ गया है तो वो कैसा रहता है, प्रसन्न आत्मा। हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम हमेशा प्रसन्न नहीं रहते हैं, कभी दुख भी आता है, बीमारी आती है। तो इससे हम जान सकते हैं कि अभी तक मैं ब्रह्माभूत स्टेज पे नहीं आया हूँ। जय जय श्री श्री गौर नित्याय भगवान की, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की। तो जो व्यक्ति ब्रह्माभूत स्टेज पे आ जाते हैं उनके लिए क्या होता है कि वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है। और दूसरी बात क्या है कि वो पूरी तरह से क्लियर रहते हैं, उनके लिए हर चीज़ एकदम साफ हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है। तो ये इस श्लोक में कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव, तो ये जो कार्पण्य है इसकी तुलना की गई है अन्य जगह पे हृदय दौर्बल्यता से। और भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे नंबर श्लोक में वो बोलते हैं ना, कौन सा, कलैव्य मा समागमा पार्थ नैता त्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो ये हृदय दौर्बल्यम क्या है, इसको एक पुस्तक है जिसका नाम है माधुर्य कदम्बनी, ये लिखे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर भी बताते हैं कि कुछ अनर्था होते हैं जो हृदय में रहते हैं और वो बहुत प्रकार के हैं। और उसमें एक अनर्थ है, उसका नाम है हृदय दौर्बल्यम, और वो चार प्रकार के हैं। एक है तुच्छ आसक्ति, दूसरा है कूटी नाटी, तीसरा है मात्सर्य, और चौथा है संप्रतिष्ठा। तो ये तुच्छ आसक्ति, कूटी नाटी, मात्सर्य, इनको हृदय दौर्बल्यम बोला गया है, हृदय की दुर्बलता और वीकनेस ऑफ हार्ट। इनको कोई भी व्यक्ति त्याग कर सकता है लेकिन हम इनको त्यागते नहीं हैं। और अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे वो प्लास्टिक बिनने वाले होते हैं, उनके पास एक बड़ा सा बैग होता है, उसमें प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक टूटा फूटा, ये सब क्या करते हैं, वो जमा करते हैं। और वो जमा करते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं मार्केट में और बेच देते हैं, और उनको जो भी पैसा मिलता है तो वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट है, मतलब बहुत बड़ा चीज़ हमने किया है। लेकिन हकीकत में वो क्या है, बहुत ही तुच्छ चीज है। तो उसी प्रकार जो बद्ध जीव आत्मा हम लोग हैं, हम इस संसार में हैं और हम भी क्या है, इस संसार के जो तुच्छ चीज है, जैसे कि वो स्कैवेंजर यानी कि कचरा बिनने वाला, कूड़ा करकट को बिनने वाला, वो जैसे बिनता है उसको और जमा करता है, वैसे हम भी इस संसार के जो अलग अलग अनर्था हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, उनको हम क्या करते हैं, मतलब जमा करते, इकट्ठा करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, उसके बाद लालची तो पूछो ही मत, लालच का कोई अंत ही नहीं है, जितना मिलता है उतना और ज़्यादा चाहिए, और उस पर का, और उसके बाद लोग के अंदर काम भावना भी है और द्वेष भी है, तो ये सारे गंदगी को हम क्या करते हैं, जमा करते जाते हैं, और हम इतना जमा कर लेते हैं कि हम जब देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति के पास हमसे ज़्यादा है ये सारे गंदगी, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्या, तो हम क्या करते हैं, उनके साथ में कंपटीशन करते हैं कि मुझे और चाहिए इससे ज़्यादा। तो इसको भी हृदय दौर्बल्य बोला गया है। तो क्या होता है कि जब हम ऐसे भौतिक आसक्ति जैसे काम क्रोध लोभ इनको पकड़ के रखते हैं, तो ये हमारे चेतना के अंदर कुछ जगह होते हैं, वो जगह को वो क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाई करके रखते हैं, और फिर अगर कोई नया चीज़ को हमें अंदर डालना है तो डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आपके लॉकर में आपने ऑलरेडी भूसा और कचरा भर के रखा है, और उसमें अगर कोई नया चीज़ डालना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको खाली करना होगा और फिर ये नया चीज़ जाएगा। तो उसी तरह हम लोग कितने सारे जन्मों से इस संसार में हैं और कितने सारे अनर्थों को जमा करके रखे हैं, तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, तो ये सारे जो गंदगी होती हैं वो बाहर जाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, भव महादावाग्नि निवारपनम, ये जो दवा अग्नि है वो खत्म होता है, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम श्री परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भागवतम में इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं इस श्लोक में कि ये भौतिक संसार जो है वहाँ पे हमेशा क्या रहता है, पग पग पे कोई समस्या है, उलझन है, हर कदम पे एक उलझन है। तो भागवत में दशम स्कंद में एक श्लोक आता है, समाश्रिताये पद पल्ल पल्लम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो इसमें बताया गया है कि पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, कि संसार में हर कदम पे क्या है, खतरा है। और एक आचार्य हैं, वो एक भजन में बोलते हैं कि कमल दल जला जीवन तलमला, कि कमल के ऊपर पानी का एक बूंद होता है, वैसा ही हमारा जीवन है, कभी भी वो पानी का बूंद नीचे गिरेगा और हर चीज़ ख़त्म। तो उसी प्रकार इस संसार में हम जो भी मतलब कर रहे हैं, अगर भगवान की भक्ति को हम सीरियसली नहीं कर रहे हैं, कुछ भौतिकता में लगे हुए हैं, भौतिक क्या है, इच्छाएं हैं और दूसरा चीज़ है, तो क्या होता है कि वो मतलब है ना, किसी भी क्षण ख़त्म हो जाएगा, और वो ख़त्म होगा तो उसको कोई बचा भी नहीं सकता, और उसको ख़त्म होने के बाद क्या है कि रिटर्न में वापसी में हमें कुछ नहीं मिलता है। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं ध्यान पूर्वक, तो ये क्या है, शाश्वत है। जो भी हम भौतिक अचीवमेंट्स यानी जो भी हम कुछ भौतिक संसार में प्राप्त करते हैं वो सब यहीं का है, यहीं पे रह जाता है। लेकिन जो भक्ति है वो क्या है, शाश्वत है, वो मरने के बाद भी कंटिन्यू होता है। नारद मुनि बोलते हैं तक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्भुजा भजन अपको अत्पते ततो यदि यत्रा को भद्रम अभ्युदमुष्य किम को अर्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मता। तो नारद मुनि बोलते हैं कि अगर कोई अपने स्वधर्म को त्याग देता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हो जाता है तो अगर वो कुछ समय के बाद गिर भी जाता है यानी कि भक्ति से ये हो जाता है, दूर चला जाता है, लेकिन फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि जितना भक्ति उसने किया है वो शाश्वत रहेगा और अगली बार फिर से वो उसी उसके अगले पॉइंट से शुरू करेगा। लेकिन भौतिक संसार में अगर कोई व्यक्ति अच्छे से हर चीज़ करता है लेकिन वो मर जाता है तो ऐसा नहीं है कि अगले समय से फिर से वो आएगा अगली बार और बोलेगा कि ये मेरा है और इसके आगे मैं इसको और कंटिन्यू करूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये भौतिक संसार में बहुत सारे संघर्ष करने होते हैं और बहुत सारे उलझने होती हैं। तो जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं और ये दिव्य बुद्धि क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। वो हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या विधि है, क्या वो प्रोसेस है जिसको अगर हम पालन करें तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस व्यक्ति का परमाणु गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो अगर परमाणु गुरु हमारे हैं तो उनकी कृपा से हमें सारा ज्ञान होता है। और एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एता ही कथियेता प्रकाशयन्ते महात्मना। तो उसमें बताया गया जिस व्यक्ति को गुरु पे और भगवान पे अनफ्लिंचिंग फेथ होता है तो उसके हृदय में जो दिव्य ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाता है। और ये भी एक श्लोक है जिसमें बताया गया है तस्मात् गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम साब्दे परे च निष्णातम ब्रह्म उपसमाश्रितम। तो तस्मात् मतलब तत् आया है सब पहले, उसका अर्थ बता रहे थे एक महाराज कि गुरु के पास हमें भौतिक जिज्ञासा लेके नहीं जाना चाहिए, उनसे ये नहीं पूछना चाहिए कि परिवार में ये हो रहा है वो हो रहा है अभी क्या करें। बोले कि गुरु के पास व्यक्ति को कब जाना चाहिए, जब वो उसका मन इस संसार में नहीं लग रहा है, जब वो इस संसार और संसार के वस्तुओं से पूरी तरह से उब गया है और उसको कुछ लेना देना नहीं है इस संसार और संसार के वस्तुओं से, तब उसको जाना चाहिए गुरु के पास और जिज्ञासु श्रेय उत्तमम उत्तम जिज्ञासा करना चाहिए, भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं संसार में हर व्यक्ति जिज्ञासा कर रहा है, वो सब्जी मार्केट में जाके पूछता है कि भाव क्या है और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में लोग पूछते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जिज्ञासा क्या है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, जिज्ञासा होना चाहिए किसके बारे में, भगवान के बारे में। तो इसमें कीर्तन के बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं और ब्राह्मण के बारे में समझाते हैं। तो एक डिवोटी बहुत सुंदर एक छोटा सा स्टोरी बता रहे थे कि कीर्तन कौन है और ब्राह्मण कौन है। कीर्तन उस व्यक्ति को बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए एक पिता हैं और उनके बहुत सारे पुत्र हैं, तो कुछ पुत्र क्या करते हैं, पिता के पॉकेट से पैसा चुरा लेते हैं और पैसा चुरा के वो क्या करते हैं, अपने पास में रखते हैं और सोचते हैं कि बाद में इसके साथ में इंजॉय करेंगे या उधर जाएंगे इधर जाएंगे और इस प्रकार से हम सुखी होंगे। लेकिन जो अच्छा सन है, जो ब्राह्मण है, जो अच्छा बेटा है, वो क्या करेगा, उसको पता है कि पिता का संपत्ति मेरा ही है, तो पिता का सेवा करेगा। तो उसी प्रकार ये जो कीर्पन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान का संपत्ति से मेरा जमीन, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, हकीकत में सारा सारा भूमि किसका है, गोपाल का। भगवान ने कहा है गीता में, हम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मैं हर चीज का क्या हूँ, स्वामी हूँ और हर चीज मेरे से ही आया है। तो ये सारा संपत्ति जो भी हम देखते हैं और जो हम नहीं देख सकते वो सब भगवान का है। और भगवान ने कहा है गीता में, अहम बीज प्रदापिता, वो 14वां अध्याय में बोलते हैं भगवान। और 9वां अध्याय में तो भगवान बोलते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग समा यजुरेव च, कि मैं पिता हूँ, माता हूँ, धाता, धाता मतलब मेंटेनर, पालक, और वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग समा यजुरेव च। तो भगवान हर व्यक्ति के माता पिता धाता हैं, पालन करता है। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम ब्राह्मण हैं, और जो कीर्पन है वो क्या करता है, भगवान का संपत्ति चुरा लेगा और बोलेगा मेरा है, और वो भगवान से अलग होके उसका भोग विलास करना चाहता है, वो सोचता है इससे मैं सुखी बनूंगा। लेकिन सुखी बनना संभव नहीं है। ये विद्यापति जी बोलते हैं कि ये सारा संसार क्या है, रेगिस्तान के समान है, और रेगिस्तान में आप घूम रहे हो और तेज धूप है, पानी का पानी चाहिए आपको, लेकिन आपको एक बूंद पानी मिलता है तो क्या होता है कि आप और ज्यादा पानी के लिए तड़पने लगते हो, क्योंकि एक बूंद मिला। तो उसी तरह संसार में जो सुख है वो बूंद के समान है। और प्रहलाद महाराज तो बोलते हैं, कुत्रा सिसा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरम अशेष रुजम विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदपि इति विद्वान कामानलम मधुलेवई समयन दुरापई। वो बोलते हैं श्रुति सुखा, यानी नाम मात्र का सुख है, लेकिन कामानलम मधुलेवई समयन दुरापई, मतलब थोड़ा सुख है नाम मात्र का, उसके लिए क्या होता है कि ये संसार के लोग एकदम पागल हैं और उसको त्यागना नहीं चाहते हैं। और प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कृष्णा का शरणागत नहीं होना है, कृष्णा के अंदर जो अजन्मा है उसको हमें शरणागत होना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा के अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं है, और जो व्यक्ति इसको नहीं समझता है तो उस व्यक्ति का भगवद गीता समझने का प्रयास क्या है, सबसे बड़ा मूर्खता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपना अपना मत देते हैं, और स्पेशली गीता पे क्या है, बहुत सारे लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। और गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम आजानन्तो मम भूतम महेश्वरम, कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो नहीं जानते हैं किसको, कि मैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। परम भाव क्या होता है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम आजानन्तो मम भूतम महेश्वरम, सारे जीवों के जो स्वामी हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, हर चीज के स्वामी हैं। तो ये जो मूर्ख व्यक्ति नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को मतलब सोचते हैं कि मानुषीम तनुम, यानी भगवान मनुष्य का शरीर लेके इस संसार में आते हैं, और इस संसार में आके वो क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं, स्पेशली जो मायावादी लोग होते हैं तो क्या बोलते हैं कि केवल एक निराकार ज्योति होता है, उनको केवल ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्मन का, और वो परमात्मा और भगवान का ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या सोचते हैं कि भगवान एक ज्योति है, निराकार है और उनके ऊपर कुछ नहीं है, अल्टीमेटली सब चीज़ निराकार है। भागवतम के पहले स्कंद में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्णा ने जब देखा कि वेदों में जो यज्ञ का संस्तुति किया गया है उसको लेके कुछ लोगों ने क्या किया, जो यज्ञ में पशु बलि का संस्तुति है, मतलब बताया गया है पशु बलि कर सकती हैं, तो उसको लेके कुछ लोगों ने यज्ञ को कसाई खाना बना दिया। तो भगवान बुद्ध देखे, भगवान कृष्णा देखे कि ये तो वेदों का मिसयूज हो रहा है, और वो जब देखे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पशुओं को इतना मार रहे हैं, तो उनके अंदर दया आई, तो हत्या, पशु हत्या को रोकने के लिए भगवान बुद्ध देव प्रकट हुए और बोले कि ये बंद कर दो। तो बोले वेदों में बताया गया है, तो बोले वेद को रिजेक्ट कर दो, और वो खुद भगवान थे और उन्होंने लोगों को बोला मुझे फॉलो करो, और उन्होंने क्या बताया, अहिंसा परमो धर्म। और उसके बाद जब भगवान बुद्ध आए और उन्होंने केवल निर्वाण यानी कि वो शून्यवाद को बताए, क्योंकि उस समय लोग ऐसे स्थिति में थे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वो लोग पशु को मार के खाते थे, तो आत्मज्ञान भगवान धर्म कुछ नहीं समझ पाते, तो इसके लिए उन्होंने ये सब चीज़ के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया, वो बोले मतलब केवल मुझे फॉलो करो, और अहिंसा के बारे में उन्होंने बताया उनको। और फिर उसके बाद शंकराचार्य आए, तो शंकराचार्य ने वेदों का, भगवान कृष्णा उनको बोले जाओ वेदों का स्थापना करो, तो आके एकत्वम, वो बोले कि आप वेद पढ़ोगे तो क्या पता चलेगा कि आप भगवान हो, वो शून्यवाद के बारे में बताए। तो जीरो, भगवान बुद्ध जीरो पे लेके आए और शंकराचार्य एक के ऊपर लेके आए, कि वो शंकराचार्य बोले कि हम और भगवान सेम है, क्योंकि उन्होंने केवल ब्राह्मण के बारे में बताया। और जो रामानुजाचार्य हैं उन्होंने बताया कि हम में और भगवान में क्या है, अंतर है, विशिष्ट अद्वैता के बारे में उन्होंने बताया कि गुण और जो मात्रा है, गुण में हम भगवान के समान हैं लेकिन मात्रा में हम अलग हैं। लेकिन माधवाचार्य दो बोले, वो बोले कि भगवान और हम में अंतर है, भगवान स्वामी और हम सेवक हैं, और चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, अचिंत्य भेद अभेदा, अचिंत्य है ये कि चेतना में हम दोनों सेम हैं, गुण में सेम है और मात्रा में हम दोनों भगवान से अलग हैं, लेकिन ये अचिंत्य हैं। और क्या है कि ये टॉप मोस्ट फिलॉसफी है, इसके आगे कुछ एक्सप्लेनेशन कोई दूसरे आचार्यों ने दिया नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते भी हैं सनातन गोस्वामी को कि जीवे रे स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, तो हमारा शाश्वत जो स्वरूप है वो क्या है, भगवान के हम सेवक हैं। और एक डिवोटी बता रहे थे कि सर्विस इज बर्थ राइट ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, सेवा करना सारे जीवों का जन्मसिद्ध अधिकार है। वो बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वो गलत है, सेवा करना भगवान श्री कृष्ण का वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।